आगे देखिए रुकू नंबर 2 है, आयत 87 से 93, हलाल और हराम की पाबंदियाँ इसका टॉपिक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमु तय्यिबात, ए ईमान वालो अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं इनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लौह कसम पर तुम्हारा मुआख़ज़ा ना करेगा। इसका टॉपिक अगर लिखना चाहें तो अभी से लिख सकते हैं, और वो क्या है कि कसम का कफ़ारा। कस्में खाने के बाद अगर तोड़नी पड़े तो क्या करो? फरमाया इसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों 10 मोहताजों को खाना देना है। बल्कि इसको शुरू से पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लफ कसम पर तुमसे मुआवजा नहीं फरमाता, लेकिन मुआवजा इस पर फरमाता है कि तुम जिन कस्मों को मजबूत कर दो इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को खाना देना है, औसत दर्जे का यानी एवरेज, जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना, या एक गुलाम या लौंडी को आज़ाद करना है, और जिनको इसकी कुदरत ना हो तो 3 दिन रोज़े हैं। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जबकि तुम कसम खा लो। और अपनी कस्मों का ख्याल रखो, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ज़ुबान की एक हल्की सी लग्ज़िश का कफ़ारा 3 रोज़े, क्योंकि आज हमें वो गुलाम और दूसरा किस्सा तो नहीं दिखता ना, तो आज के दौर में रोज़े रखे जाएंगे। तो सोच के बोलिए इसका ये मतलब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब आगे हुरमत शराब के सिलसिले की आखिरी आयत है। बात यही है कि शराब और जुआ और थान और पानसे के तीर, ये सब गंदी बातें शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो जाओ। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़स वाक़े कर दे और अल्लाह की याद से और नमाज से तुम्हें बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ और तुम अल्लाह ताला की इताअत करते रहो और रसूल की इताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर एराज करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे साफ साफ पहुंचा देना है। ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खा पी चुके हों, जबकि वो लोग तकवा रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेज़गारी भी करते हों और ईमान भी रखते हों, फिर परहेज़कारी करते हों और खूब नेक अमल करते हों, अल्लाह ऐसे नेकुकारों से मोहब्बत रखता है। ये है जी खूबसूरत सी आयतें जिसमें हलाल और हराम की कुछ पाबंदियों का तذکرہ है। इसमें सहाबा कराम के इस अमल को सामने रखें तो क्या पता चलता है? बैलेंस लाइफ गुजारो, मुतवाजन ज़िंदगी। फिर रहबानियत का इस्लाम में हिस्सा नहीं। कुछ सहाबा ने ख्वाहिश की थी कि हम शादी नहीं करते ताकि हम पूरा वक्त ही अल्लाह के बन जाएं। कुछ ने कहा हम रात को सोएंगे नहीं। इसी तरह से कुछ और ख्वाहिश आती तो अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा कि मेरा उसवा उनके लिए काफ़ी है। यानी हमारा दीन खाने पीने सोने जागने पहनने ओढ़ने में एतदाल को पसंद करता है। कुछ नहीं खाना क्यों भाई? स्ट्रॉबेरीज़ नहीं खानी क्यों? कहने लगे जन्नत में खाएंगे। तो फिर दुनिया की सारी स्ट्रॉबेरीज़ को शिप करवा दीजिए जन्नत में। ये गलत तरीका है। कुछ लोग कहते हैं अच्छे कपड़े नहीं पहनने, तो सारा अच्छा कपड़ा किसके लिए बन रहा है? अल्लाह ने रेशम के कीड़े को किसका खादिम बनाया? प्योर कॉटन किसके नसीब में है? ये गलत कॉन्सेप्ट है। असल बात है खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो और खूब अच्छे काम करो, हिसाब खुद ही हो जाएगा। अगर दिखावे के लिए, रिया के लिए, जलाने के लिए और शो ऑफ के लिए करते हो तो ये सब कुछ हुज्जत भी हो जाएगा। फिर इसी तरह हलाल अशिया का इस्तेमाल हदूद में रह कर करना है। अब इस आयत 90 पे थोड़ी सी बात करूँगी। हुरमत शराब की आखिरी आयत थी। सहाबा किराम ने हुक्म सुनते ही सारी शराब बहा कर अपने खालिस ईमान का सबूत दिया। इस पे हज़रत अनस से एक रिवायत मिलती है हमें कि जिसमें पता क्या चलता है कि एक घर में शराब का दौर चल रहा था। उस वक़्त लोग खजूर की शराब पीते थे। जब यह आयत उतरी तो अल्लाह के नबी ने एक ऐलान करने वाले को मदीना की गलियों में ऐलान के लिए भेजा कि जाकर बता दो कि शराब हराम हो गई है। ये सुनते ही अबू तलहा ने कहा बाहर ले जाकर इस शराब को बहा दो। चुनाचे मैंने बाहर निकलकर सारी शराब बहा दी। शराब मदीना की गलियों में बहने लगी। तो बस लोगों ने कहा यूँ मालूम होता है कि बहुत से लोग इस हालत में कत्ल कर दिए गए हैं कि शराब इनके पेट में मौजूद थी। फिर इस पे अगली आयतें अल्लाह ने उतारी जो अभी हमने पढ़ी हैं, लैसा लिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। मेरा एक सवाल है अपने आप से भी, आप ही कर लीजिए, इतनी जल्दी अमल कैसे हो गया? शराब तो सबसे मुश्किल चीज़ है जो कोई आदी छोड़ सके, इसलिए कि मिम्मा रफू मिनल हक, हक की मार्फत के बाद अल्लाह कोई चीज़ हराम कह दे और बंदा उसको थाम के रखे, ये हो नहीं सकता। जितना ज़्यादा दिल में शुक्र और तकवा की कैफियत होगी, अल्लाह को पहचान लेंगे, उतना अल्लाह के हुक्मों को मानना पड़ेगा। होंठों को लगे हुए जाम टूटे थे। 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में अमेरिका ने कंपेन चलाई थी शराब की हुरमत पे। हुरमत से मुराद ये कि प्रोहिबिटेड कर दो, क्योंकि बहुत सारे हादसे होते थे, बहुत नुकसान हुआ। 5-6 साल तक वो लॉस रखे, लेकिन बाद में उठा लिए कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज भी आपको पता है कि ज़रा सा मौका मिले तो सबसे ज़्यादा लोग शराब चोरी करते हैं। लीकर स्टोर्स के बाहर अक्सर कत्ल होते हैं, हमने ख़ुद भी करीब रहकर देखा है कुछ जगहों के। शराबी का जब नशा टूटता है ना, तो रात को स्टोर्स के बाहर जाके पत्थर से उसके शीशे तोड़ता है और अंदर से शराब चोरी करता है, और अक्सर भी कत्ल हो जाते हैं वहाँ। लेकिन सहाबा को किस चीज़ ने इतना संजीदा बना दिया कि मैं शराब पीऊँ? और शराब क्यों हराम है? एक जुमले में इसका जवाब है, अक्ल की हिफाजत। शरीयत ने आपकी मेरी 4 चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। जान की, इसलिए कत्ल हराम है। माल की, इसीलिए चोरी की सज़ा है। और अक़ल की भी, इसलिए शराब की हद है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें मुसलमानों में नहीं हो सकती। शराब बंदे को बेहिस कर देती है, खुद गर्ज कर देती है। आज भी आप देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे इस मुस्लिम मुल्क में शराब पी जा रही है। कॉलेजेस में बच्चे शराब लाए और पकड़े गए, ये मैंने खुद देखा सुना। और हमारी पार्टीज़ में शराब, हमारी मीटिंग्स में शराब, हमारी कई चीज़ों में शराब है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारी एयरलाइन में शराब नहीं है। बाहर की दुनिया में भी सफ़र करते हुए पीआईए शराब नहीं देता, अल्लाह करे कि यही कानून बाकी रहे। तो ज़रूरत है कि इस बेहिसी को दूर किया जाए। शराबी को दूसरे का दुख दर्द ही नहीं महसूस होता, और जुए के साथ इसका नाम है। किसी ने कहा शराब तेरा बुरा हो, तेरा नाम भी लिया गया तो जुए के साथ। जहाँ गैम्बलिंग होगी वहाँ लीकर होगा, जहाँ लीकर होगा वहाँ गैम्बलिंग होगी। और अल्लाह ताला इन सारी खुराफात से हमारे इस माशरे को बचा दे। आज जितना ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है, उतना लोगों को दीन दीजिए, खुद ब खुद छुट जाएगा ये सब कुछ इंशाल्लाह। इसके बाद एक और पाबंदी जो कि उस दौर में लगाई गई थी, क्योंकि सहाबा के लिए ये सब कुछ बहुत था। सिर्फ इतनी बात जान लीजिए कि सहाबा हर बात सुन के अमल क्यों करते थे? इसलिए कि सहाबा का हर अमल तकवा पे मबनी होता था। अल्लाह की मोहब्बत में चूर थे सहाबा। अल्लाह से बेहद मोहब्बत करने वाले होने के बावजूद अल्लाह की पकड़ से डरते भी थे, और ईमान पे साबित कदम भी रहते थे। मुहसिनीन थे, नेक किरदार था, इसलिए बात मानते थे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी इसी बात की आदत डाल दे कि हम बात सुने और फौरन अमल करने ले बन जाएं। इस रुकू में मेरे और आपके लिए अमल की बातें क्या हैं? हदों से तजावज़ नहीं करना, यानी बी बैलेंस्ड, डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट। मिस्कीनों को खाना खिलाना है, कस्मों की हिफाजत करनी है, तकवा और एहसान करने वाला बनना है, ईमान और नेक अमाल करने हैं, और शुक्र अदा करना है, और जितनी हराम चीज़ों का यहाँ तज़करा है उससे बचना है। आगे आयत नंबर 94 से 100, रुकू नंबर 3 है। टॉपिक है अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयबलुवन्नकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला कदरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा, जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकेंगे, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। बस जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा, इसके वास्ते दर्दनाक अजाब है। ऐ ईमान वालो, वहशी शिकार को कत्ल मत करो जबकि तुम हालत एहराम में हो, और जो शख्स तुम में से इसको जानबूझकर कत्ल करेगा तो इस पर फ़दिया वाजिब होगा जो कि मसावी होगा इस जानवर के जिसको उसने कत्ल किया, जिसका फ़ैसला तुम में से 2 मोतबर शख्स करेंगे, ख्वाह वो फ़दिया ख़ास चौपायों में से हो जो न्याज के तौर पर काबा तक पहुँचाया जाए, और ख्वाह कफ़ारा मसाकीन को दे दिया जाए, और ख्वाह इसके बराबर रोज़े रख लिए जाएं ताकि अपने किए की शामत का मज़ा चखे। अल्लाह ने गुज़श्ता को माफ़ कर दिया, और जो शख्स फिर ऐसी ही हरकत करेगा तो अल्लाह ताला इंतकाम लेगा, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और इसका खाना हलाल किया गया, और तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते और मुसाफरों के वास्ते, और खुश्की का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया जब तक कि तुम हालत एहराम में रहो। अल्लाह ताला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। अल्लाह ताला ने काबा को, जो कि अदब का मकान है, लोगों के कायम रहने का सबब करार दिया, और इज़्ज़त वाले महीने को भी और हरम में कुर्बान होने वाले जानवरों को भी और इन जानवरों को भी जिनके गले में पटे पड़े हों, ये इसलिए कि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला तमाम आसमानों और ज़मीन के अंदर की चीज़ों का इल्म रखता है और बेशक अल्लाह ताला सब चीज़ों को खूब जानता है। तुम यकीन जानो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला भी है और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत और बड़ी रहमत वाला भी है और रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यही बात इधर भी है। क्या अल्लाह ताला सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम पोशीदा रखते हो? आप फरमा दीजिए कि पाक और नापाक बराबर नहीं, गो कि आपको नापाक की कसरत भरी लगती हो। अल्लाह ताला से डरते रहो ए अक्लमंदो ताकि तुम कामयाब हो। यहाँ याउलिल अलबाब की बात है। अक्लमंद कौन है जो हुक्म सुनकर मान जाए? साहबा कराम के कुछ इम्तिहानों का तस्करा है। याद रखिए कि शिकार अरबों की घुट्टी में पड़ा हुआ था। जब अहराम की हालत में शिकार की पाबंदी आई तो बहुत ही बड़ा मरहला था। एक मौके पे ख़ास तौर पे सफ़रे हुदैबिया आप कह सकते हैं कि जिसमें शिकार बिल्कुल पास से गुजर रहे थे, लेकिन साहबा ने चूँकि उम्रे का अहराम बांधा हुआ था तो उन्होंने शिकार नहीं करना था। अल्लाह ताला ने शिकार को उनके बिल्कुल इतना करीब कर दिया कि अगर हाथ भी बढ़ाते ना तो वो शिकार उनके हाथों में आ जाता। लेकिन अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। एक जुमला लिखिए कि आजमाइश हमेशा मन पसंद चीज़ पे आती है। आप जिस बच्चे के बारे में बहुत सेंसिटिव होती हैं ना, अल्लाह रहम करे उसी बच्चे की आजमाइश आ जाएगी ज़िंदगी में। अल्लाह ना करे किसी के अकलौते बच्चे पे आजमाइश है। बीसियों मिसालें मौजूद है। एक ही बेटा था जवानी में चला गया, एक ही बेटा था बिगड़ गया, एक ही लाडली बेटी थी उसी को तलाक हो गई। ये फितरत है। अल्लाह पता क्या चाहता है? ये देखिएगा, इधर दिल से निकाल कर ना अपने इन बच्चों को बाहर रख दो। दिल अल्लाह की जगह, अल्लाह से मोहब्बत की। आप इंसानों में किसी रिश्ते को, मसलन किसी को अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत होती है, शौहर उसका वीक पॉइंट है, मैं इनको नाराज़ नहीं कर सकती इसलिए जो कहते हैं मैं वो करूँगी। अल्लाह ना करे उसी शौहर की तरफ से ऐसी आजमाइश आ जाए कि जिसको इंसान बर्दाश्त ना कर सके। तो क्या पता चला, सहाबा कराम का इम्तहान हुआ हालत अहराम में शिकार करने की हुरमत के साथ, लेकिन चूँकि फरमा बरदार थे तो उस बात को मान गए और नाफरमानी से रुक गए। अल्लाह ताला से गायबाना डरने वाले अलग हो जाते हैं और सहाबा कराम यहाँ भी बाजी ले गए। अल्लाह ताला आपको मुझे भी ऐसा ईमान दे दे कि बात सुनकर मानने वाले बन जाए। फिर आयत 96 से 99 में क्या है? अहराम में शिकार के अहकामात हैं। समंदरी शिकार कर सकते हैं, खुशकी का शिकार नहीं किया जा सकता। आपके मेरे लिए अल्लाह की रज़ा को पाने के काम क्या हैं? अल्लाह से डर के रहना है, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, हदों से तजावज़ नहीं करना और नापाक चीज़ों पे दिल ना बढ़े, दिल ना जाए, यानी आपको वो चीज़ अच्छी ही ना लगे जो पाक नहीं है। अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरना है और गुनाहों के कफ़ारे अदा करना है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी इस पर डाल दे। कोई चीज़ हराम है और आप उस पर लगे रहें, कोई चीज़ जिस पे अल्लाह नाराज़ है और वो आपकी ज़िंदगी में रहे, ये नहीं हो सकता। आप देखिए कि मोमिन के लिए अल्लाह की नाराज़गी नाकाबले बर्दाश्त होती है। बस अल्लाह हमें वो ईमान और तकवा अता कर दे। आगे है रुकू नंबर 4 आयत 101 से 108, कसरत सवाल की ममानियत। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तसअलू, ऐ ईमान वालों ऐसी बातें मत पूछो कि अगर वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें नागवार हों। और जो कि इस वक्त के कुरान नज़ूल है, यानी नज़ूल कुरान का मौसम है, मुराद था कि नबी सल्लम की ज़िंदगी में कुरान पाक तो नाजिल हो ही रहा था। और अगर तुम इस वक्त में वो बातें पूछोगे, यानी मुराद ये कि सहाबा कराम को इतनी एहतियात क्यों सिखाई गई थी सवालों में, क्योंकि अभी वही का सिलसिला चल रहा था, तो अगर वो सवाल करते और उसके बदले में कोई वही आ जाती तो फिर उनके लिए उसको निभाना मुश्किल होता। तो पूरी ज़िंदगी में सहाबा ने जो मेरा लिए 10-12 कह लें, टोटल 13-14 हैं, जिसमें से सहाबा के कुछ 10 से 12 सवाल थे जिस पे आयात जस सलू नका से शुरू होती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे सवाल पूछने से ज़्यादा अमल करने वाला जहन होना चाहिए। जितना सवाल पूछेंगे ना उतनी अमल की खू अमल की ख्वाहिश कम होने लगती है। ये एक फितरी सा असूल देखा गया, अल्लाह नोस दी बेस्ट। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में कसरत सवाल से रोक लिया। फिर फरमाया, दोबारा इसको सुनिएगा, ऐ ईमान वालों ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें नागवार हों। और अगर तुम ज़माने नज़ूले कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। सवालाते गुज़श्ता अल्लाह ने माफ़ कर दिए और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत वाला और बड़े हिल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और भी लोगों ने पूछी थी, इशारा है बनी इसराइल की तरफ, फिर इन बातों के मुनकर हो गए। यानी सवाल तो बड़े पूछते हैं, अमल कोई नहीं करते, हर एक से पूछते हैं ये हराम है, अच्छा कन्वीनियंस स्टोर का खाना खा सकते हैं, अच्छा सूद ले सकते हैं, अच्छा चेहरे का पर्दा है कि नहीं, हर आने वाले स्कॉलर से लोग पूछते हैं, हर मेहमान से पूछते हैं, और बाद में करते क्या है जो ये दिल का मुफ्ती कहता है। अल्लाह ताला हमें सवाल पूछने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे। इसीलिए फरमाया, अल्लाह ताला ने ना बहीरा को मशरू किया और ना साहिबा को और ना वसीला को और ना हम को, ये उनके वो जानवरों के नाम हैं जिनको बुतों के नाम पे मुकद्दस समझ के छोड़ देते थे और इनसे फ़ायदा नहीं उठाते थे। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं और अक्सर काफिर अक़ल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल की तरफ रजू करो, तो कहते हैं हमको तो वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया, कि अगरचे इनके बड़े ना कुछ समझ रखते हों और ना हिदायत रखते हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, मेरी भी फेवरेट आयत है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की भी ये फेवरेट आयत थी। 105 को हाईलाइट कर लें, बाद में इसकी तफसीर सुनिएगा। है ईमान वालों, अपनी फिक्र करो, जब तुम राहे रास्त पर चल रहे हो जो शख्स गुमराह रहे, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको जतला देगा या बतला देगा जो कुछ तुम सब किया करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देख रहे सूरत मायदा में बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी आपकी सूरत है ये। क्या तुम्हारे आपस में दो शख्सों का गवाह होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो? वो दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हों, ख्वाह तुमसे हों या गैर लोगों में से दो शख्स हों। अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को नमाज के बाद रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इस कसम के इवज कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते। अगर से कोई कराबतदार भी हो और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा ना करेंगे, हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे। फिर अगर इसकी इत्तला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, तो इन लोगों में से जिनके मुकाबले में गुनाह का इर्तकाब हुआ था और वो शख्स जो सब में करीब तर हैं जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े हों, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि बिल यकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज़्यादा रास्त है और हमने ज़रा तजावुज़ नहीं किया, हम इस हालत में सख्त जालिम होंगे। ये करीब ज़रिया है इस अमर का कि वो लोग वाक़े को ठीक तौर पर जाहिर करें या इस बात से डर जाएं कि इनके कस्में लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला से डरो और सुनो, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं करता। कितना खूबसूरत है हमारा दीन। सफ़र में मौत के असरात शुरू हो जाएं और इंसान नॉन मुस्लिम मुल्क में गैर मुस्लिमों के बीच में भी रहता हो तो क्या करे? वो पढ़ाया भी हमने इस आखिरी आयत में, क्या पता चला आयत 101 से 102 में कुछ बातें हमारे लिए गौर तलब थी। पहली बात है, हलाल रिस्क कम भी हो तो इसमें बरकत होती है, हराम रिस्क कसीर भी हो तो बेबरकत होता है, और कसरत सवाल काफिरों का तर्ज़ अमल है। साहबा ने अल्लाह के नबी से कुछ सवाल किए और बहुत ज़्यादा ही किए, तो आपको नागवारी हुई, आप मेंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया आज तुम मुझसे जो बात पूछोगे मैं बताऊंगा, यानी पूछो और क्या पूछना है, ये अंदाज। इस वक्त मैंने दाएं बाएं देखा तो सब सहाबा सर अपने कपड़ों में लपेटे हुए रो रहे थे। उन्होंने अल्लाह के नबी को ऑफेंड कर दिया। उस्ताद को कभी भी जिच नहीं करना चाहिए, खुद अपना नुकसान हो जाता है, दिल से फिर बात नहीं निकलती। खैर फिर क्या हुआ, एक साहब जिनका अगर किसी से झगड़ा होता तो इन्हें इनके बाप के सिवा किसी और की तरफ ताने के तौर पे मंसूब ना किया जाता था, उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी मेरे बाप कौन है? यानी वो समझे ही नहीं और उन्होंने सवाल पूछ लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुज़ाफ़ा। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी जवाब दे रहे हैं। किसी ने कहा मेरा बाप किधर है? आपने कहा जहन्नुम में। इस पे हज़रत उमर उठे और अर्ज़ किया, हम अल्लाह से राज़ी हैं कि वो हमारा रब है, इस्लाम से कि वो दीन है, और मोहम्मद से कि वो सच्चे रसूल हैं। हम फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की तरह खैर व शर के मामले में मैंने कोई दिन नहीं देखा, मेरे सामने जन्नत और दोजख की तस्वीर लाई गई और मैंने इन्हें दीवार के ऊपर देखा, यानी विजुअलाइज करा दिया गया। ये सही बुखारी की रिवायत 6362 है। क्या पता चला? ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, जो इल्म है वो लीजिए। खाली इल्म के बग़ैर सवाल जो होते हैं ना, वैसे ही बेकार है, ये चस्का होता है। तो QA सेशन ज़्यादा मौसर नहीं होते, सिर्फ उस सूरत में फ़ायदेमंद होंगे कि पहले आप लेक्चर कर लें, सुन लें, पूरी बात समझे, फिर जो बात ना समझे उसमें से सवाल पूछ लिए जाए। फिर इसमें बुतों के नाम पे जानवरों की बात हुई आयत 103 104 में, और अल्लाह ताला पर झूठ बांधने की बात हुई, और बाप दादा की तकलीद करने की बात हुई। हज़रत आयशा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा, इसके बास हिस्से दूसरे बास हिस्सों को खाए जा रहे हैं। मैंने अमर बिन आमिर खुजाई को देखा कि वो अपनी आंतें इसमें घसीटता फिर रहा। यही वो शख्स ने जिसने सबसे पहले सांड छोड़ने की रस्म ईजाद की, यानी बुतों के नाम पे जानवरों को छोड़ देते थे। फिर आयत 105 से 108 में अपने लिए ज़रा चंद चीज़ों को देखिएगा, इसका मजमून क्या है कि अपनी इसलाह खुद करो। हम अक्सर अपने शौहरों का या ससुराल का या बच्चों का नाम लेकर अपने ऊपर गुनाहों को जायज़ करार दे देते हैं या गलत कामों को करते हैं, तो अल्लाह ने इस आयत में खोल के बता दिया, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़्तदई, तुम हिदायत पे रहो, बड़े से बड़ा गुमराह शख्स भी नुकसान नहीं करेगा। और इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल हज़रत आसिया है, फिरौन जैसा शौहर भी उनके दीन और ईमान में कमी ना कर सका। सारी दुनिया के शौहरों की दौलत जमा हो जाए और सारी दुनिया के शौहरों का जुल्म जमा हो जाए तो फिरौन का मुकाबला ना करें, लेकिन बीबी आसिया को मारफत हक मिल गई तो वह ना दबी ना झुकी ना बिकी। अल्लाह हमें भी ऐसा ही ईमान दे दे। फिर इसमें वसीयत नामा है जो सफ़र के दौरान में मौत की सूरत में या मौत के आसार की सूरत में लिखा जाएगा। झूठी कस्मों पे ममानियत है, नाहक माल खाने पर वईद है, दो गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है, और इस्तेताद के मुताबिक नेकियां करने का हुक्म है। और ख़ास तौर पर ये जो किस्सा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वाक़िया है, और अगर आप सही बुखारी की रिवायत 2780 पढ़ लें तो उसमें इसका पूरा तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है। और हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये आयत उसी मौके पे आई जो तमीम और अदी लोगों का था। ये एक वाक़या था, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी अपने लिए अमल के नुक्ते नोट करते हैं। अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अंधी तकलीद से बचना है, ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड फॉलोशिप नहीं करनी, गवाही की अहमियत को समझना है, अल्लाह से डर के रहना है, जुल्म नहीं करना, ज़ाती मुफादात के लिए हदूद को नहीं तोड़ना, और अपनी फ़िक्र करनी है। रुकू नंबर 5 आयत 109 से 115 115 हज़रत ईसा की हकीकी दावत कहती है। अब यहाँ से ना सूरत का ततिमा शुरू हो रहा है। आप देखेंगे सूरत मायदा में चूंकि बहुत ज़्यादा तस्करा भी नसारा का हुआ, और ख़ास तौर पे हज़रत ईसा से जो अब उखाने की मुतालबे करेंगे, जैसे बनी इसराइल को मनोसलवा दिया गया इनके साथ जो मायदा का है, तो अब यहाँ से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ से उठा कर ना मैदान मख्शर में ले जाया जाएगा। आइए सुनते हैं। फरमाया यौम यजमउल्लाहुर रुसुल, जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम पैगंबरों को जमा करेगा, फिर इरशाद फरमाएगा कि तुमको क्या जवाब मिला था। वो अर्ज़ करेंगे हमको कुछ खबर नहीं, तू ही पोशीदा बातों को जानने वाला, यानी घबराहट की वजह से और अदब की वजह से ये जुमला कहेंगे। जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ईसा इब्ने मरियम मेरा ही नाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुआ, जब मैंने तुमको रूहुल कुदस से ताईद दी, तुम लोगों से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, और जबकि मैंने तुमको किताब और हिकमत की बातें और तौरात और इंजील की तालीम दी, और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिंदे की शक्ल होती है, फिर तुम इसके अंदर फूंक मारते थे जिससे वो परिंद बन जाता था मेरे हुक्म से, और तुम अच्छा कर देते थे मादरजाद अंधे को और कोड़ी को मेरे हुक्म से, और जबकि तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा था जब तुम इनके पास दलीलें लेकर आए थे, फिर इनमें जो काफिर थे उन्होंने कहा सिवाय खुले जादू के ये तो कुछ भी और नहीं, और जबकि मैंने हवारियों को हुक्म दिया था कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाए, और अब गवाह रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं, यानी पार्शल इताअत नहीं फुल बात मानते हम। वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि हवारियों ने अर्ज़ किया कि ईसा इब्ने मरियम क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ख्वान यानी खाना उतारे दस्तरख्वान। आपने फरमाया अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। वो बोले कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाए, और ये कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जाए। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे परवरदिगार हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा, कि वो हमारे लिए यानी हम में से जो अव्वल हैं और जो हमारे बाद वाले हैं सब के लिए खुशी की बात हो जाए, यानी ईद का दिन आ जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद ना हक शनासी करे, फिर यहाँ नोट कीजिएगा मिम्मा राफू मिनल हक को, इन्होंने हक को नहीं पहचाना था इसलिए इनके साथ ये कुछ हुआ। फरमाया जो हक को ना पहचानेगा तो मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि वो सजा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। क्या पता चला क्यामत का मंजर है। आयत 109 में क्यामत के दिन जो अम्बिया कराम से सवाल जवाब होने हैं उनका तस्करा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का तस्करा है और हवारियों के ईमान का भी जिक्र है और बनी इसराइल पर अजाब की वजह हक को ना पहचाना, बनी इसराइल की नाशुक्री का तस्करा है और बनी इसराइल पर अजाब इलाही का तस्करा है। आप और मैं इन आयतों को सुनकर क्या करें, रसूलों के मौजज़ात पर ईमान लाएं, अल्लाह हिफाजत करने वाला है इसका यकीन रखिए, अल्लाह ताला बेहतरीन रज़ाक है और नफ्सियाती रुकावटों का शिकार नहीं होना, सीधे चलते जाइए अल्लाह की बात सुनकर मानते जाइए, फिर अल्लाह की इनामात को याद रखना है और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे है जी रुकू नंबर 6, अल्लाह की बंदगी, आयत नंबर 116 से 120। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्ने मरियम, और वो वक्त भी काबिले ज़िक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा ए ईसा इब्ने मरियम कि आपने इन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अल्लाह के अलावा माबूद करार दे लो। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मैं तो तुझको इससे पाक समझता हूँ, मुझको तो किसी तरह से ये बात ज़ेबाना थी कि मैं ऐसी बात कहता जिसको कहने का मुझको कोई हक नहीं, अगर मैंने ये कहा होता तो तुझको इसका इल्म होगा, तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है इसको नहीं जानता, तमाम गैबों के जानने वाला तू ही है। देखिए हज़रत ईसा का अकीदा क्या है और आज उनसे नस्बत रखने वालों का अकीदा क्या बन चुका, यही होता है आम तौर पर। मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा रब भी है, मैं इन पर गवाह रहा जब तक इनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू ही इन पर मुत्तले रहा और तू हर चीज़ की बुरी खबर रखता है, अगर तू इनको सजा दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर तू माफ़ फरमा दे तो तू ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। मुराद क्या है कि ना पकड़, नबियों को इतनी मोहब्बत होती है अपनी कौमों से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ये वो दिन है कि जो लोग सच्चे थे इनका सच्चा होना इनके काम आएगा, इनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी जिनमें वो हमेशा हमेशा को रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ और खुश, और ये अल्लाह से राज़ी और खुश, और आप क्या करना चाह रहे हैं, रदी अल्लाह अन्हु वरदू अन में शामिल होना चाहते हैं, इस आयत को नोट कीजिएगा। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह ही की है सल्तनत आसमानों में और ज़मीन में और उन सब चीज़ों में जो इसमें मौजूद हैं और वो हर चीज़ पे पूरी कुदरत रखता है। क्या पता चला कि इन आयात में अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत नसारा को शर्मिंदगी से बचाने के लिए दुनिया में ये सारी बातें बता दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को जान लो, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को देखा और मुवाहिदीन के लिए खुशखबरियाँ, सच्चे लोगों को यहाँ मुवाहिदीन कहा गया। हज़रत ईसा की जो दुआ है इसके बारे में आयत जो 116 में है, हज़रत अबू ज़र से एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने एक रात नमाज़ पढ़ी और सुबह तक एक ही आयत की तिलावत के साथ रुकू और सुजूद करते रहे, और वो आयत क्या थी, इन तुअज़्ज़िब हूँ फ़इन्न हूँ इबादुक वइन तग़फ़िर लहूँ फ़इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप देखिए कि नबी सारी रात अपनी उम्मत के लिए दुआ करें और नबी सल्लम ने तो वो दुआ आखरत के लिए भी छुपा ली कि मैं वहाँ मांगूंगा अपनी उम्मत के लिए। खैर जब सुबह हुई तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप सुबह तक एक ही आयत तिलावत करते रहे और इसी के साथ रुकू और सुजूद करते रहे। आपने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करने का सवाल किया जो उसने मुझे अता कर दिया, और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो हर उस शख्स को हासिल होगी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। मुस्तद अहमद की रिवायत है 1609। तो आज से फिर अपने आप को शिर्क प्रूफ कीजिए ताकि अल्लाह के नबी की सिफारिश के हकदार बन जाए, वरना कहीं शिकायत न लग जाए। सूरत फुरकान में पढ़ेंगे आगे जाकर। क्या पता चला इस रुकू से रज़ा इलाही को पाना है, और ख़ास तौर पर देखिए रदी अल्लाह अन्हु वरदू अन्हु। हमारे थीम के साथ मैच होती हुई आयतें हैं। करें क्या? बंदगी के तकाजे पूरे करने हैं, अल्लाह का गवाह बनना है, सच्चाई की रविश इख्तियार करनी है और अल्लाह की हर चीज़ पर कुदरत है, इस पे अपने ईमान को जमाना है, अल्लाह की हर चीज़ पर निगरानी को महसूस करना है और नाहक बातों से रुकना है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। तो ये सूरत मायदा जो एक बड़ी प्रोफाउंड सूरत थी, ये पूरी होती है। बहुत दिन से, यानी जब से ही कुरान शुरू हुआ है, हम लोग मदनी सूरतें पढ़ रहे हैं और मदनी सूरतें बहुत अहकामात वाली, तवील आयतों वाली, कभी कभी बोझल अहकामात की भी होती हैं। और ख़ास तौर पे सूरत मायदा में तो आपने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से इतनी ज़्यादा आयतें सुन ली कि अब इसके बाद आपको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। किस में? सूरत अलनाम में।